प्यारे बच्चों, टार्जन की वापसी के पिछली कैसेट कहानी में आपने सुना था,
टार्जन नरशे के कटहरे के साथ लपककर खड़ा हो गया। अचानक दो आदमी अपने केबिन से दबे पांव बाहर निकले। इन दोनों ने स्याह रंग के ओवरकोट पहने हुए थे और इनके चेहरे नकाबों में छुपे हुए थे। फूंक कर कदम रखते हुए ये दोनों टार्जन की तरफ बढ़े और इससे पहले कि टार्जन को खबर हो, वो दोनों उस पर टूट पड़े। उन दोनों ने टार्जन की दोनों टांगे पकड़ी और आनंद फानन उसे समंदर में फेंक दिया।
और रैन उसी वक्त मिसेस स्ट्रॉन्ग ने अपने कैबिन के शीशे में से देखा कि ऊपर से कोई चीज समंदर में गिरी है।
आई थिंक ही इज अ मैन, लगता है कोई आदमी गिरा है, बट लेकिन शायद ये मेरा ख्याल है। हो सकता है कि किसी ने कोई फालतू चीज समंदर में गिराया, वरना तो अगर कोई आदमी गिरता तो जरूर जहाज का अलार्म बजता। ओके, सुबह को कैप्टन से मालूम करेगा।
और अगले रोज वाकई जहाज से एक आदमी गायब था। मिसेस स्ट्रॉन्ग ने जब टार्जन को न देखा तो एक मुलाजिम को उसके केबिन में भेजा। मुलाजिम ने वापस आकर बताया कि मिस्टर जॉन अपने केबिन में नहीं है और उनका बिस्तर भी वैसे का वैसा ही है, चादर पर एक शिकन भी नजर नहीं आती। ऐसा मालूम होता है कि मिस्टर जॉन अपने बिस्तर पर सोए ही नहीं। चंद लम्हों बाद सारे जहाज में जॉन के अचानक गुम हो जाने की खबर फैल चुकी थी और मुसाफिर कप्तान से सवालात कर रहे थे। मल्लाहों ने जहाज का कोना कोना देखा मगर जॉन का कहीं पता न था। आखिर कप्तान मिसेस स्ट्रॉन्ग के पास आया। उसकी आवाज कपकपा रही थी। उसने कहा,
वेल मिस, आई एम सॉरी, मैं अफसोस के साथ पर यह न्यूज आपको देता है कि मिस्टर जॉन गुम हो गया है। कुछ समझ में नहीं आता है कि किधर गया। मेरा ख्याल है कि मिस्टर जॉन समंदर में गिर गया।
नो 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 कैप्टन, नो, ऐसा नहीं हो सकता है, तुम गलत बोल रहे हो। ओह मिस्टर जॉन, व्हाट कैन आई डू।
इधर जॉन की मौत पर मिसेस स्ट्रॉन्ग आंसू बहा रही थी और दूसरी तरफ टार्जन जूं ही समंदर के ठंडे ठंडे पानी में गिरा, उसने तेजी से तैरना शुरू कर दिया। वो जल्द से जल्द जहाज से दूर हो जाना चाहता था क्योंकि टार्जन समझ चुका था कि उसे समंदर में फेंकने वाले कौन लोग हो सकते हैं। चंद लम्हों बाद जहाज खासी दूर जा चुका था। अब टार्जन था और बहरे अफ्यानूस की बेरहम मौजें। उसके लबों पर एक अजीब सी मुस्कुराहट नमूदार हुई। उसने हिम्मत हारना सीखा ही ना था। वो तैरता रहा। अब उसने अंडरवियर के अलावा सारे कपड़े उतार कर समंदर में फेंक दिए थे क्योंकि कपड़े तैरने में रुकावट पैदा कर रहे थे। अब सितारे एक एक करके मगरिब की जानिब गायब होने लगे और फिर मशरकी उफुक पर उजाला फैलने लगा। टार्जन के बाजू और पैर अब तैरते तैरते शल हो गए थे। उसने अपने आप को अब लहरों पर छोड़ दिया। दोपहर के वक्त टार्जन ने कुछ फासले पर एक बड़ा सा तख्ता बहते देखा तो वो बड़ा हैरान हुआ। उसने अपने आप से कहा,
ये तख्ता किधर से आया है? लगता है किसी जहाज का तख्ता है जो हाल ही में समंदर में गर्क हुआ है।
तख्ते को देखकर टार्जन के थके हुए बेजान जिस्म में एक नई कुव्वत उभर आई। वो जल्दी से तख्ते पर सवार हो गया। दो दिन और दो रातें टार्जन भूखा प्यासा उस तख्ते पर लेटा रहा। इस दौरान कई बार खौफनाक शार्क मछलियों ने उसका पीछा किया और उसे हड़प करने की कोशिशें की मगर वो इनके हमलों से बचता रहा। और तीसरे दिन सुबह के वक्त टार्जन को दूर, बहुत दूर समंदर में एक लकीर सी उभरती नजर आई। वो संभल कर बैठ गया। अब तख्ता लहरों पर तैरता हुआ बहता हुआ उस लकीर की जानिब जा रहा था और ये लकीर आहिस्ता आहिस्ता साफ होती जा रही थी। टार्जन के जिस्म का रुआ रुआ खुशी से कांप रहा था क्योंकि टार्जन को एक सरसब्ज और शादाब जजीरे के आसार दिखाई दे रहे थे। जजीरे से एक मील इधर ही टार्जन ने बेताब होकर तख्ते से छलांग लगा दी और तैरता हुआ साहिल की जानिब बढ़ने लगा। टार्जन को अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था क्योंकि ये तो वही जजीरा था जहां टार्जन इस मुहिम से पहले रहता था और जहां टार्जन पैदा हुआ था। पुरानी यादें टार्जन के जहन में ताजा होने लगी और जब उसने अपने केबिन को देखा जो बरसा बरस से वैसे ही खड़ा था तो टार्जन के हलक से खुशी के मारे एक नारा निकल गया,
ओह माय गॉड, माय गॉड, ये तो ये तो मेरा अपना घर है, अपना, ये मेरा केबिन है, मेरा।
अब टार्जन जजीरे के गुंजान हिस्से की तरफ चलने लगा। अब वो फिर टार्जन था, अजीम टार्जन, जंगल की खौफनाक दुनिया पर हुकूमत करने वाला इंसान। और फिर टार्जन ने जंगल के घने और तारीख हिस्से में पहुंचते ही वैश्याना अंदाज से अपनी आमद का ऐलान किया, और फिर फौरन ही जवाब में शुमाल की जानिब से शेर के गरजने की आवाज सुनाई दी। और फिर दरख्तों पर झूलते हुए बंदर खुशी से खौफियाने लगे। वो सभी बरसों से टार्जन को जानते थे, पहचानते थे। फिर तो जंगल में एक सिरे से दूसरे सिरे तक आग की तरह यह खबर फैल गई कि टार्जन आ गया है, टार्जन आ गया है। टार्जन के लिए अब भूख नाकाबले बर्दाश्त हो गई थी। अब वो शिकार की तलाश में था। उसके पास एक लंबे रस्से और चाकू के सिवा कुछ और न था, जो कि उसने अपने केबिन से लिया था। अब वो एक दरख्त से दूसरे दरख्त पर छलांगे लगाता हुआ जा रहा था, बिल्कुल बंदर की तरह। और फिर टार्जन ने लंबी घनी घास में किसी जानवर के चुपके चुपके हरकत करने की आहट सुन ली। उसने अपने आप को शाखों और पत्तों में छुपा लिया। वो देखना चाहता था कि ये जानवर है कौन। चंद लम्हों बाद उसने उसे देख लिया। ये शेर था, शेर, जंगल का एक और बादशाह। वो भी भूख से बेताब था और शिकार की तलाश में फिर रहा था। टार्जन ने मुस्कुराकर अपने आप से कहा,
ये भी भूखा है और मैं भी भूखा हूं। अब देखना यह है कि शिकार पहले किसे मिलता है।
यकायक एक और आवाज से टार्जन के कान खड़े हुए। उधर शेर भी चौकन्ना हो गया। और फिर दोनों ने एक ही वक्त में उस हिरन को देखा जो आहिस्ता आहिस्ता झाड़ियों में गुजरता हुआ उसी तरफ आ रहा था। टार्जन ने आंखें घुमाकर शेर की जानिब देखा। शेर की आंखें अब अंगारों की मानिंद दहक रही थीं। वो घास में पत्थर की बेजान बुत की तरह बिल्कुल चुपचाप छुपा बैठा था। टार्जन जिस दरख्त पर बैठा था, हिरन उसी दरख्त के नीचे एक लम्हे को दम लेने के लिए रुका। टार्जन ने फिर शेर की जानिब देखा। भूखे शेर की बेचैनी बढ़ गई थी और अब उसकी दुम आहिस्ता आहिस्ता हरकत कर रही थी। टार्जन जानता था कि अगर हिरन इस दरख्त से चंद कदम आगे गया तो फिर उसे शेर के खौफनाक पंजों से दुनिया की कोई ताकत नहीं छुड़ा सकती। और उससे पहले कि शेर उछलकर हिरन पर झपटे, टार्जन ने रस्से का फंदा बनाकर नीचे फेंका। निशाना ऐसा सही था कि फंदा ठीक हिरन की गर्दन में जा पड़ा और फौरन ही टार्जन ने उसे कस कर हिरन को ऊपर उठा लिया। वो जमीन से तकरीबन 10-12 फीट ऊंचाई पर फजा में झूल रहा था। शेर ने शिकार अपने हाथ से जाता देखा तो उसके गुस्से की इंतहा न रही। वो पूरी कुव्वत से गरजता और दहाड़ता हुआ घास में से निकला और हिरन को पकड़ने के इरादे से दरख्त की तरफ लपका, लेकिन कई बार उछलने के बावजूद वो हिरन को पकड़ने में कामयाब नहीं हुआ। टार्जन दरख्त पर इत्मीनान से बैठा हंसता रहा।
आओ बेटा, आओ, आओ, पकड़ो अपना शिकार, आओ आओ पकड़ो।
टार्जन इसी तरह हंसता रहा और शेर मायूस होकर नफरत की नजरों से टार्जन को देखता हुआ चला गया। अब शाम के साए गहरे होने लगे थे और टार्जन जल्द से जल्द अपने केबिन में पहुंचने के लिए बेचैन था। उसने अब हिरन को आहिस्ता से जमीन पर रख दिया और खुद नीचे उतर आया और चाकू के एक ही वार से उसकी गर्दन अलग कर दी और उसे अपने कंधों पर डालकर अपने केबिन की तरफ चल दिया। केबिन में पहुंचकर टार्जन ने चाकू से हिरन के टुकड़े टुकड़े किए और एक रान के अलावा बाकी गोश्त केबिन की छत के साथ बंधे हुए छोटे छोटे रस्सों से लटका दिया ताकि किसी और वक्त काम आ जाए। इसके बाद उसने दो पत्थरों को रगड़कर घास फूस को आग लगा दी और हिरन की रान को आग के शोलों में भूनने लगा। कच्चा पक्का गोश्त बड़े मजे से हड़प करके टार्जन वहीं जलती हुई आग के करीब ही लेट गया और चंद लम्हों बाद झोपड़ी के कोनों खुदरों में छुपे हुए चूहे टार्जन के खर्राटे सुन रहे थे। इधर टार्जन अपने केबिन में खर्राटे ले रहा था और उधर कुछ दिनों बाद रोकोफ का जहाज कैपटाउन पहुंच गया। इस दौरान रोकोफ ने, जिसने अपना नाम थ्यूरेन रख लिया था और आवाज भी बदल ली थी, मिस स्ट्रॉन्ग से मुलाकातें जारी रखी और फिर केप टाउन पहुंचकर उसने बाकायदा उनके घर आना जाना शुरू कर दिया। ऐसा नजर आता था कि वो किसी खास मकसद से इन लोगों से मेल जोल बढ़ा रहा है। आखिर एक दिन पालविच ने पूछा,
वेल सर, आप मिस स्ट्रॉन्ग से आजकल बहुत मिलता है, समथिंग इज
अरे मिस्टर पॉल, तुम इतनी सी बात नहीं समझते।
मिस स्ट्रॉन्ग का बाप बहुत अमीर आदमी है।
यस यस।
और इस लड़की के सिवा इस दुनिया में उसकी दौलत का मालिक और कोई नहीं।
ओह आई सी, वेल अब हम समझा, बट लेकिन क्या तुम उससे मैरिज करेगा?
मुझसे शादी नहीं करेगी तो जाएगी कहाँ? मिस्टर पॉल,
यस,
मैंने ऐसा जाल डाला है कि अब उसे मजबूरन मुझसे शादी करना ही पड़ेगा।
ओह वेल देन, वेल देन मिस्टर रोकोफ, एंड बेस्ट ऑफ लक।
थैंक यू वेरी मच मिस्टर पॉलविच।
कई हफ्ते गुजर गए और इसी असना में डेनिंगटन का छोटा सा जहाज भी केप टाउन पहुंच गया और जैन जमीन पर कदम रखते ही सबसे पहले अपनी सहेली मिस स्ट्रॉन्ग के घर पहुंची। दोनों सहेलियां एक दूसरे से लिपट गईं।
ओह जैन, रियली तुमको देखकर मैं कितना खुश हुआ, बताने को नहीं सकता। कैसा है तुम जैन?
ठीक हूँ मिस स्ट्रॉन्ग, बिल्कुल ठीक। तुम अपनी सुनाओ, तुम कैसी हो?
नहीं नहीं जैन, तुम बिल्कुल ठीक नहीं लगता। हाँ हम तो बिल्कुल ठीक है, ओके है, ओके।
नहीं नहीं मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ।
नहीं नहीं तुम्हारा बात से लगता है तुमको कोई दुख है। बताओ जैन, क्या हुआ है, क्या बात है?
मैं एक हफ्ता केप टाउन में ठहरने के बाद अपने वालिद के साथ इंग्लिस्तान चली जाऊंगी और फिर मेरी शादी हो जाएगी।
डोंट यू वरी जैन, इसमें रोने का क्या बात है? मैरिज होता तो अच्छा बात है, ऐसा रोता नहीं है, ओके? आंसू पोछो, पोछो, शाबाश, आंसू पोछो।
दो रोज बाद स्ट्रॉन्ग के वालिद के नाम एक तार आया जिसमें लिखा था कि वो फौरन बाल्टीमोर पहुंचे। उसने सफर की तैयारियां शुरू कर दी। वो अपनी बेटी मिसेस स्ट्रॉन्ग को भी साथ ले जाना चाहता था, लेकिन उसने कहा कि वो अपनी सहेली जेन के साथ इंग्लिस्तान जाना चाहती है ताकि उसकी शादी में शरीक हो सके। उस वक्त रोकोफ भी वहाँ मौजूद था। टेनिंगटन ने कहा,
सर इफ यू वांट जॉइन टू अस।
ओह व्हाई नॉट, क्यों नहीं मिस्टर टेनिंगटन, मैं जरूर आपके साथ इंग्लिस्तान चलूंगा, लेकिन एक गुजारिश थी आपसे।
यस यस।
मेरे साथ मेरा एक साथी भी है, मिस्टर पॉलविच, उसे भी अगर।
ओह श्योर श्योर, व्हाई नॉट।
ओह थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू।
एक खुशगवार और चमकीली सुबह को उनका छोटा सा जहाज इंग्लिस्तान की जानिब रवाना हो गया। अफ्रीका के साहिल के साथ साथ सफर करते हुए पहले ही दिन का वाकया है कि स्ट्रॉन्ग ने अपने सामान में से तस्वीरों की एक एल्बम निकाली। ये तस्वीरें उसने केप टाउन आते हुए जहाज पर उतारी थी। यकायक एक तस्वीर को देखकर मिस स्ट्रॉन्ग का चेहरा उदास हो गया। उसने गम से भराई हुई आवाज में कहा,
बेचारा जॉन।
जैन? यस मिस स्ट्रॉन्ग। ओह जैन, मैं तुम्हारे को बता नहीं सकता है कि ये मैन कितना कुटमैन था, कितना हैंडसम, बिल्कुल देव का माफिक ताकतवर और बच्चे का माफिक भोला भाला मासूम। बट यू नो ड्यूरिंग ट्रैवल वो मर गया, बेचारा समंदर में गिर गया। जैन, ऐसे आदमी को भी मरना नहीं चाहिए था, नहीं मरना चाहिए था।
ये कहते हुए मिसेस स्ट्रॉन्ग की आंखों से आंसू जारी हो गए। जैन चूंकि कुछ फासले पर बैठी हुई थी इसलिए वो तस्वीर नहीं देख सकी। उसने अपनी सहेली को रोते देख कर कहा,
हाँ ऐसे हादसे दुनिया में होते ही रहते हैं, शरीफ लोग जल चले जाते हैं और बदमाशों की रस्सी दराज होती रहती है।
बट यू नो मेरे को याद पड़ता है कि उसने एक बार तुम्हारे बारे में भी हमसे बात किया था।
मेरे बारे में?
हाँ हाँ तुम्हारे बारे में। लुक है ये फोटोग्राफ, देखो शायद तुम इसे पहचानेगा।
लो दिखाओ।
लो देखो पहचानो।
ओह डार्सन, तुम तो क्या, तुम मर गए डार्सन।
जैन, जैन, ओ नो।
तस्वीर देखते ही जैन बेहोश होकर फर्श पर गिर गई और एक दो दिन के अंदर ही अंदर जैन की हालत मुर्दों से बदतर हो गई। वो बरसों की बीमार नजर आने लगी। उसका फूल की तरह खिला हुआ चेहरा मुरझा गया। वो हर वक्त अपने केबिन में बिस्तर पर पड़ी छत को घूरा करती। जैन की बीमारी के दो रोज बाद उस जहाज पर एक आफत आई
اس کا ایک انجن چلتے چلتے اچانک خراب ہو گیا اور جہاز اپنے راستے سے بھٹک کر نہ جانے کہاں جا نکلا۔ دو روز تک انجن کی مرمت ہوتی رہی، پھر وہ چلنے کے قابل ہوا۔ لیکن انجن ٹھیک ہوتے ہی سمندر میں ایک خوفناک طوفان آیا اور بڑی بڑی لہروں نے جہاز کو ایک کھلونے کی مانند ادھر سے ادھر اچھالنا شروع کر دیا۔ جہاز کے عرشے پر جو سامان رکھا تھا وہ سب لہروں کی نظر ہو گیا۔ اس کے بعد دو ملا آپس میں لڑ پڑے، ایک نے دوسرے کو ہلاک کر دیا، پھر مارنے والا خود بھی سمندر میں کود گیا۔ اگلے روز جہاز کا ایک اور تجربے کار افسر غائب ہو گیا۔ تلاش کے باوجود اس کا کوئی پتہ نہ چل سکا۔ ان حادثوں نے مسافروں کو ڈرا دیا تھا اور ہر شخص کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ سب لوگ دعائیں مانگ رہے تھے کہ آنے والی مصیبت کسی طرح ٹل جائے، مگر ان کی دعائیں بے سود ثابت ہوئیں، کیونکہ اچانک ایک دھماکہ ہوا اور جہاز پھرکی کی طرح ایک ہی جگہ گھومنے لگا۔ اسی وقت جہاز کے کپتان نے کہا،
لیڈیز اینڈ جینٹلمین، ہمارے کو بہت افسوس کے ساتھ بتانا پڑتا ہے کہ جہاز آپ ٹریولنگ کے قابل نہیں ہے۔ اس کو بچانا آپ بیکار ہے اور اس کو ڈوبتے میں کم از کم 20 منٹ لگ جائے گا۔ اس لیے ہم کو اس موقع سے فائدہ اٹھا کر ان کشتیوں پر سوار ہو جانا ہے جو جہاز کے ساتھ بندھا ہوا ہے۔ پلیز آپ لوگ اپنے ساتھ اونلی کھانے کا سامان لے لیں، اوکے؟
ملاحوں اور عملے کے دوسرے لوگوں نے 4 کشتیاں پانی میں اتار دی اور مسافر ان میں اترنے لگے۔ جین اتنی کمزور تھی کہ 2 قدم بھی نہیں چل سکتی تھی، اور ویسے بھی ٹارزن کی موت کے بعد اسے اپنی زندگی سے کوئی دلچسپی نہ تھی۔ اس نے سوچا شاید اسی بہانے اسے موت آ جائے، لیکن یک یک کسی نے اسے اپنے بازوؤں میں لے لیا۔ جین کے حلق سے ایک چیخ نکلی اور پھر اسے کچھ خبر نہ رہی۔ جب جین کو ہوش آیا تو صبح کا اجالا مشرق کی جانب پھیل رہا تھا۔ سمندر کی لہریں پرسکون تھیں اور ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا کے جھونکے چل رہے تھے۔ جین کو ہوش آیا تو اس نے آنکھیں کھول کر دیکھا کہ اس کے قریب ہی ولیم اور رکوف اوندھے پڑے ہوئے تھے، اور کشتی کے آخری کونے پر 3 ملا بے سود یوں دکھائی دے رہے تھے جیسے مر چکے ہوں۔ جین کا دل غم کی وجہ سے بیٹھنے لگا، وہ بے اختیار چیخیں مار مار کر رونے لگی۔ جین کی چیخیں سن کر ولیم اور رکوف جاگ پڑے۔ ولیم نے دیکھا کہ لمبے چوڑے سمندر میں صرف وہی 6 شخص ہیں جو کشتی پر سوار کسی نامعلوم منزل کی جانب چلے جا رہے ہیں۔ ولیم نے تعجب سے کہا،
مجھے خوب یاد ہے کہ 4 کشتیاں حفاظت سے سمندر میں اتار دی گئی تھی، لیکن اب صرف یہ کشتی ہے، باقی 3 کشتیاں کہاں ہیں؟
جناب آپ ان کی فکر نہ کیجیے، کشتیاں ادھر ادھر بکھر گئی ہیں، خدا نے چاہا تو بہت جلد وہ ہم سے آ ملیں گی یا ہم ان تک پہنچ جائیں گے۔ اور ویسے بھی جناب ان کشتیوں کا ایک دوسرے سے الگ ہو جانا ہی اچھا ہے۔
کیوں کیوں الگ ہو جانا کیوں اچھا ہے؟
اس لیے جناب کہ ہو سکتا ہے کہ سمندر میں جانے والا کوئی جہاز کسی کشتی کو دیکھ کر مدد کے لیے آ جائے۔
ہاں تو پھر
اسی صورت میں باقی کشتیاں بھی بچ سکتی ہیں، ورنہ ایک ساتھ سفر کرنے میں یہ فائدہ نہیں ہوتا۔
ہاں تم بالکل ٹھیک کہتے ہو، واقعی اس طرف تو میرا خیال ہی نہیں گیا تھا۔
جی جی
کیا نام ہے تیرا؟
ٹومکن جناب۔
ٹومکن، تو یہ سب بکواس بند کر اور یہ بتا کہ کشتی پر پانی اور خوراک کتنی ہے۔
دیکھیے جناب والا، زبان سنبھال کر بات کیجیے، میں آپ کا غلام نہیں ہوں جو آپ مجھ پر حکم چلا رہے ہیں۔ آپ خود دیکھ لیجیے گا کیا ہے اور کیا نہیں۔
سور کتے کمینے،
مسٹر تھیورین، آپ نے لڑنے کا یہ بالکل غلط موقع تلاش کیا ہے۔ اس وقت ہم سب ایک مصیبت سے دو چار ہیں، پہلے اس سے نمٹنے کی کوئی تدبیر ہونی چاہیے، یہ لڑائی جھگڑا تو بعد میں بھی ہوتا رہے گا۔
مسٹر ولیم، آپ نہ روکتے تو میں اس بدماش کو ابھی مزہ چکھا دیتا، یہ کمینے لوگ لاتوں اور گھوسوں سے ہی درست رہ سکتے۔
چلیے اب غصہ چھوڑیے، میں دیکھ لیتا ہوں پانی اور خوراک کتنی ہے۔ ہاں بھائی ذرا دیکھو تو ان کنسٹروں میں کیا کیا ہے۔
یہ جناب ایک کنسٹر پانی کا ہے اور ایک کنسٹر میں خشک بسکٹ ہے، یہ لیجیے خود دیکھ لیجیے۔
نہیں بس ٹھیک ہے، دونوں کنستر وہیں رکھے رہنے دو۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیں اس پانی اور خوراک کو احتیاط سے استعمال کرنا چاہیے، کیونکہ ہمیں کچھ معلوم نہیں کہ ہمیں کب تک سمندر کے سینے پر تیرنا پڑے۔ اس لیے میں آپ لوگوں سے درخواست کروں گا کہ اپنوں میں سے ایک کو اس کشتی کا کمانڈر مقرر کر لیں اور باقی سب اس کا حکم مانیں۔
ہم سب یہی چاہتے ہیں کہ ہمیں کمانڈر بنائیں۔
اچھا ٹھیک ہے،
जैसे आप सबकी मर्जी।
तीनों मल्लाहों ने एक जबान होकर कहा तो जैन ने भी सर हिलाया। ये सुनकर रुकोफ गुस्से से होंठ काटता रहा लेकिन कुछ बोला नहीं। विलियम ने सबकी बात सुनकर कहा,
तो दोस्तों तय यह हुआ कि रोजाना सुबह शाम हर शख्स को एक चुल्लू पानी पीने के लिए और दो बिस्कुट खाने को मिलेंगे। मुझे उम्मीद है कोई साहब इससे ज्यादा की ख्वाहिश नहीं करेंगे।
हमें मंजूर है।
ओके ओके ओके, ताबुन का बहुत बहुत शुक्रिया।
इन सबको पूरी उम्मीद थी कि चंद रोज के अंदर अंदर समंदर में सफर करने वाला कोई जहाज उन्हें बचा लेगा, मगर जब एक हफ्ता गुजर गया और कोई जहाज दिखाई न दिया तो उन्हें नाउमीदी ने घेर लिया। रुकोफ की वजह से उनका सुकून भी गारत हो चुका था। ये शख्स हर वक्त लड़ने मरने पर आमादा नजर आता। रुकोफ ने इस दौरान कई मर्तबा बिस्किट भी चुराए और अपने हिस्से से ज्यादा पानी भी पीता रहा। नतीजा ये निकला कि आठवें दिन उनके पास पीने के लिए पानी का एक घूंट भी न था और बिस्किट वो तो एक दिन पहले ही खत्म हो चुके थे। ये माजरा देखकर विलियम ने कहा,
दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं ना, अब हमारे पास खाने के लिए कुछ है और न ही पीने के लिए पानी, इसलिए अब आप लोग बारिश के लिए दुआ मांगिए क्योंकि अब बारिश का पानी ही हमारी मदद कर सकता है।
जैन पर गशी तारी थी और यही हाल तीनों मल्लाहों का था। उनकी दाढ़ियां और मूछें बेतहाशा बढ़ चुकी थीं और कपड़े फट गए थे। सफर के 15वें दिन दोपहर के वक्त यकायक कश्ती के अंदर एक चीख सुनाई दी और फिर रोने की आवाज आई। वजह मालूम की तो मालूम हुआ विल्सन नामी मल्लाह के भाई ने दम तोड़ दिया। सब लोगों ने बड़ी कोशिशों के बाद उसकी लाश को समंदर में फेंका। विल्सन अब पागल सा हो गया था। कभी वो हंसता, कभी रोता और कभी गीत गाने लगता। भाई की मौत ने उसकी ये हालत कर दी थी। आखिर एक रोज वो भी अपनी जगह से उठा और एकदम से अपने आप को समंदर में गिरा दिया। बिखरी हुई मौजें आनन फानन उसे निगल गईं। अब कश्ती के 6 मुसाफरों में से 2 हमेशा हमेशा के लिए रुखसत हो चुके थे कि अचानक 18वें रोज तीसरा मल्लाह भी मरा हुआ पाया गया। अब इन लोगों में इतनी भी सकत बाकी न थी कि उस मल्लाह की लाश को उठाकर समंदर में फेंक दें। फिर भी विलियम हिम्मत करके लाश उठाने की कोशिशें करने लगा। ये देखकर जैन ने भी हिम्मत की और आगे सरक कर विलियम का हाथ बटाने लगी। उन्होंने हांफते हुए बड़ी मुश्किल से मल्लाह की लाश को उठाकर समंदर की लहरों के हवाले कर दिया। रात आधी से ज्यादा गुजर चुकी थी कि अचानक विलियम ने कश्ती में किसी की हरकत करने की आवाज सुनी। यह आवाज उस तरफ से आ रही थी जिस तरफ रुकोफ लेटा था। विलियम के रोंगटे खड़े होने लगे। आवाज लम्हा बलम्हा साफ होती चली गई। विलियम ने चीखना चाहा मगर आवाज हलक से ना निकली। आहट और करीब आने लगी और फिर विलियम ने अपनी टांगों पर किसी का बोझ महसूस किया। इस मर्तबा विलियम के हलक से एक घुटी घुटी सी चीख निकल ही गई और विलियम बेहोश हो गया। मशरक की जानिब से जब सुबह की रोशनी फैलने लगी तो विलियम होश में आया। उसने आंखें फाड़ फाड़ कर इधर उधर देखा मगर कुछ नजर ना आया। फिर उसने आंखें बंद कर ली और एक सुहाना ख्वाब देखने लगा। बारिश, मूसलाधार बारिश। पानी ने उसका जिस्म तर कर दिया और फिर उसने मुंह खोल दिया और खुश्क जबान को तर किया। अब विलियम के बदन में जान पड़ने लगी।
ये तो ख्वाब है। नहीं नहीं, ख्वाब नहीं है, ये तो हकीकत है।
और फिर एक झटके के साथ उसने आंखें खोल दी। खुशी से विलियम का दिल झूम उठा। आसमान पर काली काली घटाएं छाई हुई थी और बारिश हो रही थी। विलियम ने उठना चाहा लेकिन उसके पैरों पर कुछ बोझ सा था। अब उसने गौर से देखा, ये थ्योरेन यानी रुकोफ था। वो आंधे मुंह बेहोश पड़ा हुआ था और उसके दाएं हाथ में चाकू था। विलियम ने कोशिश करके अपनी टांगें आजाद कराई। फिर उसने रुकोफ के हाथ से चाकू लेकर अपने कोट की जेब में रखा और जेन की तरफ बढ़ा और लरसते हाथों से जेन की गर्दन ऊपर उठाई। अभी वो जिंदा थी मगर मुर्दों से बदतर। विलियम ने बारिश का पानी उसके खुश्क होंठों पर मला। थोड़ी देर बाद जेन ने बेहोशी के आलम में कहना शुरू किया,
पानी,
जेन, जेन,
ये पानी,
हाँ, जेन, हाँ पानी है, आखिर गोलू जेन, देखो, देखो ये बारिश हो रही है,
क्या, क्या बारिश हो रही है,
बारिश हो रही है,
विलियम, बारिश, थैंक्स गॉड. ये कौन है? मिस्टर थ्योरिन.
हाँ, ये मिस्टर थ्योरिन है.
तो क्या क्या तुमने इसे मार डाला है?
नहीं जेन, जिंदा है.
लेकिन ये
घबराओ नहीं जेन, ये बेहोश है.
ये बेहोश है?
हाँ, इसने आधी रात को मुझ पर चाकू से हमला करने की कोशिश की थी.
तुम पर?
हाँ, मुझ पर, मगर शायद कमजोरी की वजह से कामयाब नहीं हो सका. और मेरे कदमों पर भी ये देखो, ये रहा वो चाकू जो इसने अपने हाथ में पकड़ा हुआ था. और अब अगर मैं चाहूँ जैन, तो इस बदमाश को अभी और इसी वक्त कत्ल कर
सकूं. नहीं, नहीं, तुम ऐसा ना करो. इसे तुम आपको अपनी मौत मरने के लिए छोड़ दो.
अच्छा ठीक है, मैं इसे जरा सीधा तो कर दूं.
नहीं, इसे यूं ही पड़ा रहने दो, वरना पानी पीकर इसके बदन में जान आ जाएगी और फिर वो तुमसे जरूर लड़ाई करेगा.
लेकिन जेन, देखना तो चाहिए, हो सकता है मरी गया.
नहीं नहीं विलियम, इसे यूं ही पड़ा रहने दो, मुझे डर लगता है.
अच्छा अच्छा जेन, जैसे तुम्हारी मर्जी.
ये कहकर विलियम आगे बढ़ा ही था कि उसकी निगाहें कुछ फासले पर समंदर में एक लंबी सी सुरमई रंग की लकीर पर पड़ी. उनकी कश्ती तेजी से उसी लकीर की जाने पड़ रही थी और फिर ये लकीर आहिस्ता आहिस्ता साफ होती चली गई. विलियम खुशी से चिल्लाया,
जमीन जेन, जमीन! खुदा का लाख लाख शुक्र है कि जमीन दिखाई दी.
जमीन! अब तुम चाहो तो मिस्टर थ्योरिन को होशियार कर सकते हो.
इतना कहकर जेन ने उठकर देखा, दूर बहुत दूर अफ्रीका का कोई घना और तारीक जंगल नजर आ रहा था और फिर आहिस्ता आहिस्ता दरख्त साफ दिखाई देने लगे. जंगल की दुनिया में दोबारा लौट आने के बाद टार्जन सब कुछ भूल चुका था, लेकिन उसे एक बात का दुख जरूर था और वो ये कि उस बदमाश रोगोफ को कोई सजा ना दे सका. एक तो मर्तबा उसे मिसेस स्ट्रॉन्ग का भी ख्याल आया कि खुदा जाने उस मासूम लड़की पर क्या बीती होगी. फिर टार्जन को बोंगा गांव का ख्याल आया. इस गांव में जंगली लोगों की छोटी सी बस्ती थी और यहाँ उसके कई पुराने दोस्त रहते थे. उसने दिल में सोचा, खुदा मालूम उसकी गैर हाजिरी में उन बेचारों पर क्या गुजरी होगी, क्योंकि मुझे यहाँ आए हुए 3 दिन हो गए और अभी तक बोंगा कबीले का कोई आदमी ऐसा नहीं है. कहीं ऐसा तो नहीं कि गुलामों की तिजारत करने वालों ने फिर उन पर हमला किया हो और बहुत से लोगों को वो गुलाम बनाकर ले गए. जरूर यही बात होगी. टार्जन के दिल की धड़कन आहिस्ता आहिस्ता तेज होने लगी. उसने केबिन में से खंजर और रस्सा निकालकर कंधे पर डाला और बोंगा गांव की जानिब रवाना हो गया. थोड़ी दूर चलने के बाद टार्जन ने एक छोटी सी पहाड़ी पर चढ़कर नीचे झांका तो बोंगा गांव उसके कदमों तले था. मगर किस हाल में, झोपड़ियां जली हुई, सामान इधर उधर फैला हुआ और कहीं कहीं औरतों बच्चों और आदमियों की लाशें भी पड़ी हुई थी. टार्जन की आंखों में आंसू आ गए. इसलिए नहीं कि वो इन लाशों को देखकर डर गया था, बल्कि इसलिए कि वो ऐसा जुल्म बर्दाश्त नहीं कर सकता था. उसकी नजर में काली चमड़ी वाले भी इंसान हैं, तो फिर सफेद लोग उन्हें दुख क्यों पहुंचाते हैं, क्यों हकीर समझते हैं? क्या दुनिया में काले रंग के इंसानों को जीने का कोई हक नहीं है? टार्जन अभी ये सोच ही रहा था कि एक बू ने उसे चौंकन्ना कर दिया.
یہ بو کسی انسان کے جسم کی تھی۔ ٹارزن چیتے کی مانند پھرتی سے ایک درخت پر چڑھ گیا اور اپنے آپ کو پتوں میں چھپا لیا، اور چند منٹ کے بعد اس نے دیکھا ایک لمبا تڑنگا آدمی جس نے صرف بڑے بڑے پتوں سے بنی ہوئی لنگوٹی پہنی ہوئی تھی، وہ گلے اور ہاتھ پاؤں میں زرد رنگ کے کڑے اور ہاتھ میں لمبا سا نیزہ لیے چلا رہا تھا۔ کسی وحشی قبیلے کا آدمی لگتا تھا۔ وہ اسی درخت کے قریب سے گزر کر جس پر ٹارزن بیٹھا تھا ذرا دور جا چکا تو اچانک ٹارزن کی ناک میں ایک اور بو آئی، اور یہ بو ایسی نہ تھی جسے ٹارزن جیسا آدمی پہچاننے میں دیر لگاتا۔ ٹارزن نے گردن گھما کر لمبی گھاس پر نظریں گاڑ دی۔ ایک طاقتور شیر گھاس میں چپکے چپکے حرکت کر رہا تھا۔ اس کا جبڑا کھلا ہوا تھا اور وہ بالکل بلی کی مانند دبے پاؤں آگے بڑھ رہا تھا۔ اسی جنگلی آدمی کو پکڑنے کی فکر میں وہ آگے بڑھتا چلا آ رہا تھا۔ ٹارزن نے جنگلی آدمی کو بچانے کا ارادہ کیا کیونکہ اسے ایک درندے کے مقابلے میں اپنے ہی جیسے انسان کی نازک اور خطرناک تھا کہ ٹارزن اپنی بے مثال پھرتی اور طاقت کے باوجود شیر کے حملے سے محفوظ نہ تھا کہ اچانک خبشی کا نیزہ سنسناتا ہوا آیا اور شیر کے دائیں شانے میں گھس گیا۔ شیر الٹ کر گرا اور زمین پر لوٹنے لگا۔ خبشی شیر کو بے بس نہ کر آگے بڑھا اور شیر کے شانے میں گھسا ہوا نیزہ نکال لیا۔ زخمی شیر کی دہاڑ اور گرج سن کر ارد گرد سے بے شمار لوگ، جن میں عورتیں، بچے اور لمبے تڑنگے مرد بھی تھے، چیونٹیوں کی طرح نمودار ہونے لگے۔ وہ لوگ حیرت اور خوف کی نظروں سے سفید چمڑی والے شخص کو دیکھ رہے تھے جس نے جنگل کے بادشاہ کی گردن میں پھندا ڈال کر اسے بے بس کر دیا تھا۔ اور تھوڑی دیر کے بعد ان لوگوں کو ساری بات معلوم ہو گئی تو وہ لوگ خوشی سے ناچنے کودنے اور اچھلنے لگے، اور دیکھتے ہی دیکھتے انہوں نے شیر کو اپنے نیزوں اور کلاڑیوں کی مدد سے ہلاک کر ڈالا اور ٹارزن کو اپنے گھیرے میں لے کر اپنی بستی کی طرف روانہ ہو گئے۔ ٹارزن نے جس شخص کی جان بچائی تھی وہ بوسولی قبیلے کا سردار تھا اور اس کا نام بوسولی تھا۔ بوسولی نے ٹارزن کو بتایا،
دوست ابھی کچھ دن پہلے ہی غلاموں کی تجارت کرنے والے سفید آدمیوں اور ان کے حبشی غلاموں نے بونگا قبیلے پر حملہ کیا تھا۔
اوہو، اچھا اچھا، تبھی مجھے وہاں کوئی دکھائی نہیں دیا۔
جی بالکل، وہ لوگ ان کے بہت سے آدمیوں اور عورتوں کو غلام بنا کر لے گئے۔
اوہو، یہ تو بہت برا ہوا۔
اور یہی نہیں، انہوں نے ان کا سونا اور ہاتھی دانت بھی چھین لیے۔ ان بزدلوں نے ایک روز بوسولی قبیلے پر بھی حملہ کیا تھا، لیکن ہم لوگوں نے ڈٹ کر مقابلہ کیا اور ان کے کئی آدمی مار ڈالے۔
بہت اچھا کیا، بہت اچھا کیا۔ پھر کیا ہوا؟
پھر وہ لوگ بڑی مشکل سے جان چھڑا کے بھاگ گئے، مگر جاتے جاتے ان لوگوں نے قسم کھائی تھی کہ وہ بہت جلد دوبارہ آئیں گے اور اس قبیلے کو تہس نہس کر ڈالیں گے۔
تو پھر آئے وہ لوگ دوبارہ؟
نہیں، अभी तक तो नहीं आए, लेकिन मुझे यकीन है कि बस दो एक दिन में वो हमला जरूर करेंगे।
तुम बिल्कुल फिक्र ना करो, अब मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारी पूरी पूरी मदद करूंगा।
ये सुनते ही सब लोग खुशी से उछलने कूदने और नाचने लगे। रात को उन्होंने टार्जन की दावत का इंतजाम किया और इस दावत के दौरान टार्जन को मालूम हुआ कि इन लोगों ने टार्जन को अपना सरदार चुन लिया है। इस पर टार्जन ने बसोली से कहा,
भाई ये सरदारी का ओहदा तुम्हें को ही मुबारक हो, मैं सरदार बनना नहीं चाहता।
नहीं नहीं जनाब, आपको सरदार बनना ही पड़ेगा क्योंकि आप सबसे ज्यादा ताकतवर और बहादुर आदमी हैं और आप ही हमें हमलावरों से महफूज रख सकेंगे।
लेकिन एक बात याद रखना और अपने तमाम साथियों से भी कह देना।
हाँ हाँ जनाब, बोलो क्या बात है।
मैं उसी वक्त तक तुम लोगों का सरदार हूँ जब तक तुम मेरा हुक्म मानोगे। अगर तुमने कभी मेरे हुक्म के खिलाफ काम किया तो मैं हमेशा हमेशा के लिए यहाँ से चला जाऊँगा।
मैं तमाम कबीले की तरफ से वादा करता हूँ कि हम सब लोग तुम्हारी हर बात मानेंगे।
और ये भी वादा करो कि तुम मुझसे कोई बात नहीं छुपाओगे।
हम वादा करते हैं कि कोई बात नहीं छुपाएंगे।
मैं जो कुछ पूछूंगा तुम सच सच बतलाओगे।
हाँ, हम वादा करते हैं कि हमें जो कुछ भी मालूम होगा सच सच बतलाएंगे।
अच्छा, तो सबसे पहले ये बताओ कि ये जो तुम्हारी औरतों के पास जेवर है और इनमें ये जो पीले रंग की धात है, ये कहाँ से आई जिसे लोग सोना कहते हैं?
बस इतनी सी बात थी जो आप हमसे पूछना चाहते थे।
हाँ,
क्या आपको इस धात की जरूरत है?
नहीं नहीं, मुझे इसकी जरूरत नहीं है। फिर भी तुम बताओ कि ये तुम्हारे पास कहाँ से आई?
ये एक लंबी और दिलचस्प दास्तान है,
मैं जरूर सुनना चाहूंगा।
यहाँ से दूर, बहुत दूर, उस मकाम पर जहाँ से सूरज निकलता है, पहाड़ों और घने जंगलों के पीछे बस्ती है। ये उन दिनों की बात है जब मेरे बाप का बाप जवान था और उसे नित नए कारनामे करने का बड़ा शौक था। अपने इसी शौक की खातिर वो दूर दराज इलाकों में निकल जाता। इसी तरह एक बार वो अपने चंद साथियों को लेकर जुनूब मशरिक की जानिब चल पड़ा। सुन रहे हैं?
हाँ हाँ, मैं तुम्हारी कहानी बड़े शौक से सुन रहा हूँ।
हाँ हाँ, ये कहानी बड़ी दिलचस्प है। तो जनाब, मेरे बाप का बाप पहाड़ों के उस पार पहुंचा जहाँ एक बहुत ही तारीक और घना जंगल था। वहाँ उसने एक अजीब किस्म की मखलूक को चलते फिरते देखा।
अच्छा,
उस मखलूक के भी हमारी तरह दो हाथ, दो पांव, दो आंखें और दो कान थे, लेकिन न वो हमारी तरह बिल्कुल काले थे और ना आपकी तरह गोरे चिट्टे।
अच्छा,
बस उनका रंग दरमियाना था, मगर उनके जिस्मों पर रीच की तरह लंबे और घने बाल थे। जब वो हुर्रा कर एक दूसरे को पुकारते तो यूं लगता जैसे जैसे बनमानस लड़ रहे हैं।
कहीं तुम्हारे बाप का बाप ख्वाब तो नहीं देख रहा था भूसुरी?
नहीं नहीं जनाब, बिल्कुल नहीं।
भाई मेरी तो सारी जिंदगी इन्हीं जंगलों में गुजरी है, मैंने तो आज तक उस मखलूक को नहीं देखा।
हम लोग कभी झूठ नहीं बोलते सरदार।
ओहो, तुम तो नाराज हो गए, मैं तो मजाक कर रहा था बुसुली। अच्छा फिर आगे कहो, आगे आगे क्या हुआ?
फिर मेरे बाप के बाप ने देखा कि वो लोग जर्द रंग की उसी धात के जेवर पहने हुए थे और उन्होंने अपने हथियार भी उसी से सजा रखे थे।
उस बस्ती का नाम क्या था ये मालूम नहीं हुआ?
हाँ, मेरे बाप के बाप ने उस बस्ती का नाम लिया था।
हाँ, क्या नाम था उस बस्ती का?
उस बस्ती का नाम था ओपार। हाँ, और उस बस्ती के एक पहाड़ के अंदर एक बहुत बड़ा गार है और जर्द रंग की ये धात उसी गार में जमा थी। फिर मेरे बाप का बाप अपनी बस्ती में लौट आया और यहाँ के सब जवानों को अपने साथ लेकर ओपार वालों से जंग की। दोनों तरफ के आदमी मारे गए, लेकिन जीत मेरे बाप के बाप की हुई।
बहुत
और यूं ये धात हमारे हाथ। आओ मैं तुम्हें दिखाता हूँ।
आओ।
बुसोली टार्जन को बस्ती से कोई दो तीन मील दूर ले गया। वहां एक छोटा सा दरिया बह रहा था जिसके दोनों किनारों पर एक बहुत बड़े दरख्त का तना आर पार डालकर पुल बनाया गया था। उन्होंने उस पुल के जरिए दरिया पार किया और फिर बुसोली ने एक जगह रुक कर चंद झाड़ियां हटाई। टार्जन ने देखा कि जमीन के अंदर एक सुरंग सी खुदी हुई है और इसके देखते ही देखते बुसोली उस सुरंग में गायब हो गया। चंद दिन बाद
टार्जन को वसूली की दूर से आवाज सुनाई दी।
सरदार सुरंग में आ जाइए, मैंने मशाल जला ली है।
टार्जन ने फौरन सुरंग में छलांग लगा दी। उसके पांव नरम और गीली जमीन में गड़ गए। यहाँ खासा अंधेरा था और सड़ी हुई घास की बदबू हर तरफ फैली हुई थी। फिर उसने वसूली को मशाल लिए देख लिया। ये बहुत गहरी और लंबी सुरंग थी। देर तक चलने के बाद एक जगह वसूली रुका और उसने मिशल सर से ऊंची की। टार्जन ने अपने आप को एक ऐसे कमरे में पाया जहां बेशुमार इंसानी खोपड़ियां और पिंजरे पड़े हुए थे।
सरदार, ये हमारे बाप, उनके बाप और फिर उनके बापों की हड्डियां हैं। और हमने जरधात का सारा जखीरा इन्हीं की हिफाजत में रखा है ताकि इसे कोई दुश्मन चुरा ना सके।
अच्छा अच्छा।
और ये पहला मौका है कि एक गैर शख्स जो हम में से नहीं है लेकिन अब हमारा सरदार है इस खजाने को देख रहा है।
इतना कहते ही वसूली ने मिशेल टार्जन के हाथ में दे दी और ढांचों को एक तरफ हटा दिया। टार्जन का सांस ऊपर का ऊपर और नीचे का नीचे रह गया। इन ढांचों के पीछे सोने के डलों के अंबार लगे हुए थे और जूं ही मिशेल की रोशनी इस अंबार पर पड़ी पूरा हॉल रोशनी से जगमग जगमग करने लगा।
ओह माय गॉड।
सरदार, आप इसमें से जितनी धात लेना चाहे ले सकते हैं, ये सब आपकी है।
नहीं नहीं मेरे दोस्त, ये चीज तुम्हारी है और तुम ही इसके मालिक हो। मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं। आओ आओ अब यहां से वापस चले।
अभी टार्जन और वसूली सुरंग से बाहर निकले ही थे कि एक आदमी नेजा हाथ में लिए दौड़ता हुआ आया और फूली हुई सांस से कहने लगा,
जल्दी कीजिए सरदार, गुलामों की तिजारत करने वालों ने बस्ती पर हमला कर दिया है।
वसूली कबीले के गांव पर गुलामों की तिजारत करने वालों का यह हमला इतना अचानक और जबरदस्त था कि इन बेचारों को संभलने का मौका ही न मिला। हमलावरों के पास राइफलें और बंदूकें थी। उन्होंने शाम होने से पहले पहले 50 मर्दों और औरतों को कैद कर लिया और इससे दुगने लोगों को गोलियों से छलनी कर दिया। कबीले के बाकी लोग घने जंगल के अंदर भाग गए। वसूली और टार्जन भी साथ ही थे। हमलावरों ने जिस संगदिली से बेगुनाह लोगों का कत्लेआम किया था उसे देखकर टार्जन के तन बदन में आग सी लग गई। वो भूखे चीते की मानिंद उन पर टूट पड़ने के लिए बेचैन था, मगर मुसीबत ये थी कि यहाँ नेजे और तीर कमानें थी और वहां बंदूकें और राइफलें। टार्जन को वसूली ने बताया,
सरदार यहाँ ये लोग इसलिए हमला करते हैं कि एक तो हाथी दांत के तमाम जखीरे लूट कर ले जाएं और दूसरे यहाँ के मर्दों और औरतों को गुलाम बना लें।
ये लोग औरतों और मर्दों से क्या काम लेते हैं?
ये जालिम भेड़ बकरियों की तरह इन लोगों को दूसरे मुल्क ले जाकर फरोख्त कर देते हैं। बरसों से ये लोग इसी तरह जुल्म करते चले आ रहे हैं। इन जालिमों ने साहिल के साथ साथ बेशुमार बस्तियां उजाड़ डाली।
फिर तो इन जालिमों के लिए कुछ ना कुछ सोचना ही पड़ेगा।
रात की तारीकी में वसूली कबीले के बचे कुचे लोगों ने चर्बी की मिशलें रोशन की और दुश्मन से दो दो हाथ करने की तदबीरों पर गौर करने लगे। आखिर बहुत देर बहस करने के बाद टार्जन ने कहा,
मैंने तमाम तजवीजें सुनी और उन पर गौर किया, मगर उनमें से कोई भी तजवीज बेनजदीक अच्छी नहीं है। और अगर तुम इस पर अमल करोगे तो दुश्मन तुम्हें चुन चुन कर मार डालेगा। इसलिए अब तुम सब लोग मेरी बात गौर से सुनो और मैं यकीन दिलाता हूं कि अगर तुम लोगों ने मेरे कहने पर अमल किया तो हम बहुत जल्द न सिर्फ दुश्मन को चूहे की तरह घेर लेंगे बल्कि वो हमेशा हमेशा के लिए इधर का रास्ता ही भूल जाएंगे।
हम अपने सरदार की हर बात मानने के लिए तैयार हैं।
ठीक है ठीक है, अब जब तक तुम लोग मेरा कहना मानोगे मैं दिलो जान से तुम्हारे साथ हूँ, लेकिन नाफरमानी की सूरत में मैं तुम लोगों को छोड़कर चला जाऊंगा और फिर तुम लोग कभी मेरी शक्ल नहीं देखोगे।
हम नहीं करेंगे।
ठीक है अब थोड़ी देर बाद
आधी रात होने वाली है। तुम लोग चुपके चुपके अपनी बस्ती की तरफ चलोगे। हर शख्स के पास नेजा और तीर कमान होगी। बस्ती के करीब पहुंचकर तुम में से हर शख्स मेरे इशारे पर किसी न किसी दरख्त के पीछे छुप जाएगा और उस वक्त तक अपने हथियार ना चलाएगा जब तक मैं उल्लू की बोली ना बोलूं। क्या तुम लोग मेरी बात याद रखोगे? ठीक है।
आधी रात के वक्त कोई 150 जवानों का एक ग्रोह नेजे और तीर कमाने संभाले हुए टार्जन के पीछे पीछे बस्ती की जानिब रवाना हुआ। ये सब घुप अंधेरे में भी यूं चले जा रहे थे जैसे दिन की रोशनी उनके गिर्द फैली हुई हो। न कोई शख्स गिरा और न किसी ने ठोकर खाई। टार्जन सबसे आगे दरख्तों की शाखों और टहनियों पर बंदर की तरह उछलता और छलांगे लगाता हुआ जा रहा था। कबीले के वो नौजवान जो अपने आप को निहायत फुर्तीला, ताकतवर और बहादुर समझते थे, वो भी टार्जन की गैर मामूली रफ्तार और फुर्ती देखकर हैरान थे और सोच रहे थे कि उन्होंने सफेद चमड़ी वाले को अपना सरदार चुनकर कोई गलती नहीं की। बस्ती के अंदर हैबतनाक खामोशी छाई हुई थी। कहीं कहीं चर्बी से जलने वाली मिशलों की रोशनियां झिलमिला रही थी। टार्जन ने अपने साथियों में से 10 आदमियों को एक दायरे की शक्ल में फैलाकर मुख्तलिफ दरख्तों के पीछे छुप जाने का इशारा किया और कहा कि जब तक उन्हें उल्लू की आवाज सुनाई न दे, तीर या नेजे हरगिज न फेंके। अब जिस जगह टार्जन था, यहां से हमलावरों के पहरेदार साफ नजर आ रहे थे, जिनकी तादाद 5 थी और इन 5 के हाथों में राइफलें थी। टार्जन हाथ पैरों के बल लंबी घास में चलता हुआ जब कुछ और नजदीक पहुंचा तो उसे पता चल गया कि हमलावरों में से ज्यादातर लोग मजे से सो रहे हैं और ये 5 पहरेदार ही जाग रहे हैं। बस्ती के आखिरी सिरे पर बनी हुई सरदार की बड़ी झोपड़ी में से औरतों के रोने की मध्यम मध्यम आवाजें भी टार्जन के कानों तक पहुंची। उसने दिल में कहा, ऐसा मालूम होता है कि जालिमों ने अपने कैदियों को इस झोपड़ी में बंद कर रखा है। वहां भी एक पहरेदार खड़ा ऊंग रहा था। टार्जन दबे पांव घूम कर उसी झोपड़ी के नजदीक जा पहुंचा और करीब ही एक दरख्त पर चढ़ गया। एक लम्हे के लिए पहरेदार ने मुड़कर देखा, फिर गाफिल होकर ऊंघने लगा। अब टार्जन शाखों और टहनियों पर से होता हुआ पहरेदार के ऐन सर पर आ गया और इससे पहले कि पहरेदार हरकत कर सके, टार्जन दरख्त पर से कूदा और इसकी फौलादी उंगलियां पहरेदार के गले पर इस तरह गड़ गईं कि उसके हलक से आवाज तक न निकली। अब टार्जन ने उसको घसीट कर एक गड़े में डाल दिया और उसकी राइफल और कारतूसों की पेटी खुद संभाल ली। फिर उसने चुपके से झोपड़ी का दरवाजा खोला और अंदर चला गया। चंद लम्हे बाद एक एक करके तमाम कैदी मर्द और औरतें बाहर निकले और जंगल की तारीकी में गुम हो गए। इस काम से फारिग होकर टार्जन ने अपना नेजा संभाला और दरख्त पर चढ़ गया। एक दो मिनट तक हालात का जायजा लेने के बाद टार्जन ने दोनों हाथ मुंह पर रखकर उल्लू की बोली बोली। दरख्तों के पीछे छिपे हुए नौजवानों ने टार्जन की आवाज सुनी, दोनों ने तीर कमानों में जोड़े और कमर के बल झुक कर आगे बढ़े। अब चारों पहरेदार उनके तीरों की सत में थे। यकायक 4 तीर सनसनाते हुए कमानों से छूटे और चारों पहरेदारों के जिस्मों में गड़ गए। किसी के मुंह से सरासी भी आवाज न निकली। आनन फानन उनकी राइफलों पर कब्जा कर लिया गया और चारों लाशें घास और झाड़ियों में छुपा दी गई। अब टार्जन के साथी जोश इंतकाम से दीवाने हो गए थे और चाहते थे कि एकदम से सोए हुए हमलावरों को घेर लें, लेकिन टार्जन ने उन्हें रोका और समझाया,
ना ना ना, ऐसी हरकत हरगिज ना करना, क्योंकि दुश्मन की तादाद बहुत ज्यादा है और उन सबके पास राइफलें हैं। मुमकिन है कि हम पहले हमले में दुश्मन के 5-10 आदमियों को मौत के घाट उतार दें, लेकिन जो ही वो होशियार हुए और राइफलों से फायरिंग शुरू कर दी तो फिर हमारे लिए छुपने की जगह ना होगी और हम सब बुरी तरह मारे जाएंगे।
हाँ सरदार, ये बात तुम बिल्कुल ठीक बोलते हो। तो अब क्या करें?
अब इस वक्त यहाँ से वापस चलते हैं, क्योंकि थोड़ी देर बाद सुबह होने वाली है और सोया हुआ दुश्मन जब जागेगा और उसे पता चलेगा कि रात को उसके 5 आदमी मार डाले गए हैं और तमाम कैदी फरार हो चुके हैं, तो उन पर हमारी हैबत बैठ जाएगी और वो जल्द से जल्द हाथी दांत अपने नौकरों के सरों पर रखकर साहिल की जानिब जाने के लिए बेचैन होगा। मगर हम साहिल तक उनका पीछा करेंगे और अपने नेजों और तीर कमानों से उन्हें मारते चले जाएंगे।
बहुत अच्छी तरकीब सोची है सरदार,
लेकिन इस काम में बड़ी एहतियात और होशियारी की जरूरत है।
बिल्कुल सरदार बिल्कुल, हम होशियारी से हर काम करेंगे।
आओ अब यहाँ से चले और सुबह होने से पहले पहले रास्ते के इर्द गिर्द दरख्तों और झाड़ियों में छुप जाएं।
ठीक है सरदार, चलिए आओ।
और टार्जन की यह तदबीर दुरुस्त साबित हुई, क्योंकि दुश्मन को सुबह होने से पहले ही पता चल गया कि बुसूली कबीले के लोग रात को उनके 5 आदमियों को मौत के घाट उतार गए हैं और उन्होंने तमाम कैदियों को भी आजाद करा लिया है। हमलावरों के सरदार ने हुक्म दिया कि हाथी दांत का तमाम जखीरा फौरन नौकरों की पीठ पर बांध दिया जाए। चुनाचे पहरेदारों की हिफाजत में ये काफिला साहिल की जानिब रवाना हो गया, जहां उनके जहाज खड़े थे। लेकिन मौत के फरिश्ते उनके सरों पर मंडला रहे थे। टार्जन और उसके साथी मीलों तक रास्ते के दोनों जानिब घने दरख्तों, झाड़ियों और ऊंची ऊंची घास में दुबके हुए दुश्मन की आमद का इंतजार कर रहे थे। और काफिला जब इन दरख्तों के करीब आया तो टार्जन की कमान से तीर निकला और सबसे आगे जाने वाला एक सिपाही औंधे मुंह जमीन पर गिर पड़ा और उसके गिरते ही इर्द गिर्द के दरख्तों और झाड़ियों से तीरों और नेजों की बारिश होने लगी। हमलावरों के बहुत से आदमी मारे गए और काफिले में अफरा तफरी मच गई। सफेद फाम आकाओं ने जवाब में अपनी राइफलों और बंदूकों से अंधाधुंध फायरिंग की, लेकिन उनकी गोलियां दरख्तों के तनों और शाखों में लगती रही। बुसोली कबीले के लोग हमला करने के फौरन बाद ही अपने सरदार टार्जन के साथ जंगल में दूर दूर तक फैल चुके थे। उन्होंने सारे दिन में 3 मरतबा काफिले पर हमला किया और हर हमले में दुश्मन के बहुत से आदमियों को हलाक कर दिया। ये देखकर हमलावरों के गुलामों में अपने आकाओं के खिलाफ नफरत और बगावत के आसार दिखाई देने लगे और टार्जन इसी लम्हे का इंतजार कर रहा था। शाम के वक्त दुश्मनों का काफिला एक जगह सस्ताने के लिए रुक गया। अब टार्जन एक ऊंचे दरख्त पर चढ़ गया और फिर टार्जन की गरजदार आवाज जंगल में गूंजी। वो हमलावरों के गुलामों से कह रहा था,
ऐ सफेद चमड़ी वालों के काले गुलामों, क्या तुम अब भी अपने आकाओं से पीछा छुड़ाने के लिए तैयार नहीं हो? इन सफेद चमड़ी वालों ने तुम्हें अपना गुलाम बना रखा है और तुम्हारे जरिए दूसरों को भी गुलाम बनाते हैं और उन्हें लूटते हैं। ये हाथी दांत जो तुमने बोसीरे कबीले से छीने हैं, तुम कभी भी साहिल तक नहीं ले जा सकोगे, बल्कि इसी जंगल में तुम सब मौत के घाट उतार दिए जाओगे। लेकिन हाँ, एक शर्त पर तुम्हारी जानें महफूज रहेंगी और वो शर्त ये है कि तुम हाथी दांत यहीं छोड़ दो और अपने सफेद आकाओं पर टूट पड़ो। घबराओ नहीं, हम तुम्हारे साथ हैं। हाँ, हम तुम्हारे साथ हैं।
टार्जन की आवाज सुनते ही काफिले में खौफ की एक नई लहर दौड़ गई। सफेद आकाओं ने, जिनकी तादाद अब सिर्फ 30 रह गई थी, घबरा कर अपने 150 काले गुलामों की जानिब देखा और बंदूकें उनकी तरफ तान ली। लेकिन अब काले गुलामों की आंखें खुल चुकी थी। वो अपने साथियों को मरते हुए नहीं देख सकते थे। वो सब के सब चीखें मारते हुए उठे और अपने आकाओं पर पिल पड़े। चंद लम्हों की जंग के बाद लड़ाई बंद हो गई, क्योंकि सफेद आकाओं में से एक भी जिंदा नहीं बच सका था। अब काले गुलामों में से एक ने ऊंची आवाज में कहा,
हमने इन सफेद चमड़ी वालों को मार डाला है और हाथी दांत भी हमारे पास महफूज है। अब वो शख्स हमारे सामने आ जाए जिसने थोड़ी देर पहले हमसे बातें की थी।
अचानक के दरख्त से धम से कोई चीज नीचे गिरी और काले गुलामों के सामने आ गई। ये सफेद चमड़ी का एक लंबा तड़ंगा और खूबसूरत आदमी टार्जन था। काले गुलाम टार्जन को देखते ही तुसानु होकर बैठ गए और गड़गड़ाने लगे। उनका ख्याल था कि ये शख्स कोई देवता है। अब टार्जन के इशारे पर उसके आदमियों ने उन गुलामों को अपने घेरे में ले लिया। सबसे पहले राइफलों और बंदूकों पर कब्जा किया और फिर हाथी दांत का जखीरा संभाल कर ये गिरोह टार्जन के आदमियों के पहरे में साहिल की जानिब रवाना हो गया। लेकिन टार्जन उनके साथ जाना नहीं चाहता था।
तो फिर सरदार तुम कहां जाओगे?
मैं अब अपने केबिन में जाकर आराम करूंगा।
तुम फिक्र मत करो, एक दो दिन आराम करने के बाद मैं तुम्हारे कबीले में जरूर आऊंगा।
इतना कहकर टारजन अपने केबिन की तरफ चल दिया। और उधर दूसरी तरफ जब विलियम और रुकोफ की कश्ती किनारे पर पहुंचकर रेत में धंस गई तो उनकी जान में जान आई। अब बारिश भी थम चुकी थी और बादल छट जाने के बाद सपहर का सूरज आसमान पर चमक रहा था। वो तीनों ठंडी ठंडी नर्म रेत पर देर तक बेसुध पड़े रहे। आखिर थोड़ी देर बाद विलियम उठा और उसने कश्ती को घसीटकर एक दरख्त के तने से बांध दिया। रुकोफ भी उस वक्त तक पूरी तरह होश में आ चुका था। उसने चैन से कहा,
मुझे यकीन नहीं आता कि हम जिंदा बच गए, लेकिन सवाल यह है कि हम हैं कहाँ और यहाँ से वतन कैसे जाएंगे।
जिस खुदा ने हमें मुसीबत से निकालकर यहाँ तक पहुँचाया है, वही हमें वतन भी पहुँचा देगा। घबराने की क्या जरूरत है।
तुम ठीक कहती हो जीन, मेरा दिल गवाही देता है कि मुसीबत के दिन अब गुजर गए। खुदा करे तुम्हारे वालिद और मिसेस स्ट्रांग भी सही सलामत हैं।
हाँ विलियम, खुदा करे वो सब भी सही सलामत हो।
सब्र करो जीन, मुझे यकीन है कि वो भी हमारी तरह जरूर जिंदा बच गए।
चंद रोज के अंदर अंदर उनकी खोई हुई ताकत वापस आ गई। फिर रुकोफ और विलियम ने एक ऊंचे से दरख्त के ऊपर छोटा सा मचान बना लिया। इस मचान पर वो रात के वक्त दरिंदों से महफूज रह सकते थे। शुरू शुरू में वो जंगली फल और नर्म नर्म पौधे खाकर पेट भरते रहे। फिर उन्होंने छोटे छोटे जानवरों और मछलियों को पकड़ना शुरू कर दिया। एक महीना गुजर गया। अब वो जंगल से किसी कदर मानूस हो गए थे, लेकिन जंगल में ज्यादा दूर जाने की उनमें हिम्मत न थी। रुकोफ कुछ दिन शरीफ बना रहा, मगर फिर उसने विलियम और जैन पर रोब डालना शुरू कर दिया था। विलियम और रुकोफ की कई बार तूतू मैं हो चुकी थी। उनके दरमियान नफरत और दुश्मनी की खलीज बढ़ती गई और दोनों एक दूसरे को जान से मार डालने की फिक्र में रहने लगे। और एक दिन अचानक विलियम को जंगली बुखार ने आंत पोचा और एक दिन के अंदर ही अंदर विलियम को अदमुआ कर दिया। लेकिन रुकोफ को विलियम की कोई परवाह न थी, बल्कि वो चाहता था कि विलियम एड़ियां रगड़ रगड़ कर मर जाए ताकि वो जैन से शादी कर सके। और एक रोज रुकोफ ने न जाने क्या सोचा कि जैन का हाथ पकड़कर कहने लगा,
जैन मेरे साथ चलो, आज मैं एक और जगह देख कर आया हूं, हम वहां आराम से रह सकेंगे, क्योंकि यहां की हवा खराब हो गई और मैं नहीं चाहता कि मुझे इस कमबख्त विलियम को दफन करने के लिए कब्र खोदनी पड़े।
तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया, मैं विलियम को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी।
चल वरना मरूंगा एक थप्पड़।
नहीं, मैं हरगिज़ नहीं जाऊंगी।
चल मेरे साथ जाएगी कि नहीं, इस कमबख्त को छोड़कर चल, चल।
जैन के रोने और चीखने की आवाजें विलियम के कानों तक भी पहुंची, लेकिन उसमें हरकत करने की भी सकत नहीं थी। रुकोफ जैन को घसीटता हुआ मारता पीटता लिए चला जा रहा था कि अचानक दरख से एक शख्स जमीन पर कूदा और रुकोफ के सामने खड़ा हो गया। रुकोफ ने नजर उठा के देखा तो दहशत के मारे थर थर कांपने लगा।
तुम टारजन?
हाँ मैं टारजन।
टारजन?
तुम फिक्र मत करो जैन, ये मूजी अब तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इस बदमाश ने मुझे इतना परेशान किया है कि मैं तुम्हें बता नहीं सकता जैन। खैर अब इसे दुनिया की कोई ताकत मरने से नहीं बचा सकती।
नहीं, नहीं, टारजन, ऐसा न करो, तुम इसे माफ कर दो।
ये शख्स माफ कर देने के काबिल नहीं है जैन।
नहीं नहीं, मैं तुम्हारे पांव पड़ता हूँ, मुझे जान से मत मारो, मुझे माफ कर दो टारजन, मुझे माफ कर दो।
माफ तुम्हें उसी सूरत में करूंगा कि तुम अब मेरे कैदी की तरह रहोगे। लो जैन, इस रस्सी से अच्छी तरह इसके हाथ बांध दो। खबरदार, कोई चाल नहीं चलेगी। हाँ जैन, बांधो अच्छी तरह से हाथ इसके कस के। अब तुम मुझे पूरा किस्सा सुनाओ जैन, तुम यहाँ पहुंची कैसे।
और फिर जैन की जबानी सारा किस्सा सुनने के बाद टारजन को सदमे के साथ खुशी भी हुई। सदमा इस बात का कि इन लोगों को इतनी तकलीफें उठानी पड़ी, और खुशी इस बात की कि जैन की शादी अभी तक विलियम से नहीं हुई थी और ना जैन विलियम से शादी करना चाहती थी। विलियम बुखार की हालत में बेहोश पड़ा था। टारजन ने उसके मुंह पर छींटे दिए तो वो होश में आया और टारजन को देखकर सख्त हैरान हुआ। फिर उसकी नजर जैन और रुकोफ पर पड़ी तो दोनों हाथों से सर पकड़कर कमजोर आवाज में बोला,
क्या मैं जिंदा हूं?
हाँ,
मर चुका हूं। टारजन, मेरे दोस्त।
हाँ विलियम,
जैन,
बोलो बोलो।
तुम दोनों मुझे माफ कर दो, वरना मेरी रूह
परेशान रहो।
नहीं विलियम, तुम ठीक हो जाओगे।
ये कहकर विलियम ने अपने सरहाने से पीले रंग के कागज का एक पुर्जा निकाला और जैन की तरफ पढ़ा दिया, और इसके साथ ही विलियम ने एक जोरदार हिचकी ली और उसकी गर्दन एक तरफ ठलक गई।
नहीं विलियम!
जैन चीख मारकर टार्जन से लिपट गई और सिसकियां ले लेकर रोने लगी। इसके बाद जैन ने कागज का वो तय किया हुआ पुर्जा खोला और उस पर लिखी हुई इबारत पढ़ी। ये डार्नो का वही तार था जो उसने पेरिस से टार्जन को भेजा था और जिसे टार्जन गोली बनाकर जमीन पर फेंक चुका था। तार में लिखा था, उंगलियों के निशानात से साबित हो गया है कि तुम ही नवाब जॉन क्लेटन के बेटे हो।
टार्जन, विलियम ने ये बात तुम्हें पहले नहीं बताई?
नहीं नहीं, मुझे ये बात पहले से मालूम थी, लेकिन
लेकिन क्या?
मेरा ख्याल था कि शायद तुम
हाँ बोलो बोलो ना,
तुम विलियम से शादी करना चाहती हो और इसलिए मैंने अपनी जायदाद वापस देने की कोशिश नहीं की।
यू आर ग्रेट टार्जन, रियली यू आर ग्रेट।
अभी ये दोनों बातें कर ही रहे थे कि वसूली और उसके साथी टार्जन को ढूंढते हुए आ गए।
सरदार, जब हम आपकी तलाश में इधर आ रहे थे तो समंदर के किनारे हमने एक जगह कई सफेद चमड़ी वाले आदमी देखे थे। उन्होंने अपने रहने के लिए लकड़ी के मकान बना रखे हैं और उनके पास भी वैसे ही हथियार हैं जिनके मुंह से आग और धुआं निकलता है।
ओ वसूली, हमें फौरन उस जगह ले चलो जहाँ तुमने उन सफेद चमड़ी वालों को देखा है।
आइए सरदार, चलिए अभी चलिए।
अब वसूली टार्जन को लेकर साहिल के करीब चलने लगा। वो जूं जूं साहिल के करीब आता गया, उसके दिल की धड़कन तेज होती जा रही थी। आखिर एक जगह रुककर उसने इन लोगों का जायजा लिया और सबसे पहले उसकी नजर एक लड़की पर पड़ी तो वो बेख्तियार चिल्ला उठा,
ओ मिसेस स्ट्रॉन्ग!
ओ माय गॉड, ये तुम हैं मिस्टर जॉन?
यस यस।
ओ जैन, तुम भी हैं? हाँ मिसेस स्ट्रॉन्ग, हम सबको नई जिंदगी मुबारक हो।
माय गॉड, माय गॉड।
उनकी ये अचानक मुलाकात बेशुमार रासुओं और कैकहों का पैगाम लेकर आई। जैन अपने बाप के गले से चिमटी सिसक रही थी और मिसेस स्ट्रॉन्ग उसे तसल्लियां दे रही थी। डार्नो ने टार्जन को बताया कि असल में वो उसी को ढूंढने निकला था, लेकिन इत्तेफाक से मिसेस स्ट्रॉन्ग और उनके साथ ही मिल गए। अगर तुम आज भी ना आते तो हम लोग आगे बढ़ जाते, और रोकोफ के बारे में सबकी यही राय थी कि उसे मार दिया जाए। लेकिन टार्जन ने कहा,
नहीं, मैं इसे मारना नहीं चाहता, बल्कि मैं इसे पुलिस के हवाले करूंगा।
टार्जन, तुम क्यों फिर खतरा मोल लेते हो?
तुम नहीं जानती जैन इस शख्स को, इस शख्स से वो तमाम राज वापस लिए जाएंगे जो इसने फ्रांसीसी फौजी अफसरों से हासिल किए हैं। डार्नो, रोकोफ को हथकड़ी लगवाओ और इसे अपने साथ ले जाओ, समझे?
डार्नो के कहने पर पुलिस ने रोकोफ को हथकड़ी लगा दी और चंद पुलिस अफसरों के साथ उसे जहाज पर भेज दिया गया। और जब जैन ने सब लोगों को यह बताया कि टार्जन नवाब जॉन क्लेटन का बेटा है तो उन लोगों की खुशी की इंतहा न रही। प्रोफेसर पोर्टर ने उसी वक्त ऐलान कर दिया कि जब तक मैं जैन की शादी टार्जन से नहीं कर दूंगा, यहां से हरगिज नहीं जाऊंगा। और अगले ही रोज टार्जन के उस केबिन में, जो उसके वालिद की यादगार था, शादी की एक सादा सी तकरीब हुई। इस तकरीब में जैन और टार्जन को हमेशा हमेशा के लिए एक दूसरे की जिंदगी का साथी बना दिया गया।
विश यू बेस्ट ऑफ लक मिस्टर जॉन एंड मिसेस जॉन, ओह आई मीन मिसेस टार्जन, आप दोनों को शादी का मुबारकबाद कबूल हो।
शुक्रिया, बहुत बहुत
बहुत बहुत शुक्रिया मिसेस स्ट्रॉन्ग।
टार्जन और जैन की शादी की खुशी में वसूली कबीले के लोगों ने हाथी दांत का जखीरा और सोने का खजाना टार्जन के हवाले किया, और शादी के बाद टार्जन और उनके साथ